ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मुझे खांसी है तो बड़ा नहीं मानना खांसी तो। श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद सातवां अध्याय 21वां श्लोक। स्वर्णम यथा ग्रावासु हेमा कारा क्षेत्रेषु योगेश अभिज्ञा अपनिया क्षेत्रेषु देहेषु तदात्मा योगे अध्यात्मा वेद ब्राह्मा गाते नवेत स्वनम्यता गवास हेम कालक क्षेत्रेषु योगेश्वर अभिज्ञ अपनिया क्षेत्रेषु देहेषु तदात्मयोगे अध्यात्मा वेद्यमगतिं लभेत। स्वर्णं यथा गवासु हेमकारा क्षेत्रेषु योगेश्वर अभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु चिदात्मयोगे अध्यात्मा विद्ब्रह्म गतिं लभेत। These chapters
Sarnam Sunne ko Yatha Jis prakar Gravasho Swarna khanij ke pattharo mein Hemakara Swarna ke vishay mein janne wala विशेषज्ञ क्षेत्रेषु सोने की खानों में जो गई विभिन्न विधियों द्वारा तद अभिज्ञः जानकार जो यह जानता है कि सोना कहाँ है आपनुयात सरलता से प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रेषु भौतिक खेतों में देहेषु मनुष्य शरीरों तथा शेष 84 लाख जोनियों में तथा उसी प्रकार आत्मजोगई आध्यात्मिक विधियों से अध्यात्मवेद आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को समझने में दक्ष है। ब्रह्म गति आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि लभेत प्राप्त कर सकता है। अद्माध्यम तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वह उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं। और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया है वह यह नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मूर्ख दुर्भति लोग जिनमें तथाकथित ज्ञानी दार्शनिक तथा विज्ञानी सम्मिलित हैं, शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझा जा सकता क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत, आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक कोई भू गर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हुआ हो वह पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता वह आत्मा तथा पदार्थ के विषय में कुछ नहीं समझ सकता। यहाँ पर कहा गया है जो गैस तद अभिज्ञ, इसे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है वह समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें जीवन के प्रति पशुवत धारणा रहती है वह आध्यात्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति रहती ही नहीं वह इसे नहीं समझ सकता। एक दक्ष खनिज वेता या भूगर्भ शास्त्री यह समझ सकता है कि सोना कहाँ कहाँ पर है और उसे निकालने के लिए वह धन लगा सकता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी तरह दक्ष अध्यात्मविद तत्ववेता भी समझ सकता है कि पदार्थ के भीतर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता वह सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। इसी प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से यह नहीं सीखा कि आत्मा कहाँ है और पदार्थ क्या है वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने के लिए उस मनुष्य को योग प्रणाली में या अंततः भक्ति योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 55 में कहा गया है भक्त्या माम अभिजानाति। जब तक कोई भक्ति योग की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक वह शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13 में निम्नलिखित शिक्षा सिखाने से प्रारंभ होती है। दहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार पहला उपदेश है कि शरीर के भीतर आत्मा रहता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। आध्यात्मिक ज्ञान का यह शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की परवाह नहीं करता वह देहात्म बुद्धि में पशुवत जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। अस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु स एव गोखर। मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को समझना चाहिए क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है जिसके कारण वह सोचता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति। कुकरों के सी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये नित्य संबंधित हैं। इस प्रकार जीवन की समस्याएं हल करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण।
ओम ज्ञानेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितामि स्वयं रूपा करामि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं सर्वजतं सहगना रघुनाथं संसदेवं सद्वैतं सुवधूतं वैजना साहित्यं कृष्णा चैतन्या देवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्री विशाखानन्द हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंद राधा कंचन सत्ता कंचना गौरांगी राधे वाचा कल्पतरुश कृपा सिंधुभव पनीता पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निचनंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण स्वनम्यताग्रश हेमकारो क्षेत्रेषु योगेषु अभिज्ञ अप्नुयात् क्षेत्रेषु देशे तदात्मयोगे ध्यानमिर्ब्रह्म गतिम् न वेद। ये श्लोक उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। आप सब प्रहलाद महाराज से परिचित हो। कौन थे प्रहलाद महाराज? उन्हें महाजन माना जाता है। अब हमारे शास्त्र में 12 प्रसिद्ध महाजन हैं। स्वयं नारद शंभु कौमारा कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्मो मिलिंद भाई ऐसा के इनमें एक हैं प्रहलाद महाराज। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने क्या शिक्षा प्राप्त की माता के घर में। प्रहलाद माता के घर में थे और उनके पिता हिरण्यकश्यपु मंदारा पर्वत में गहरी तपस्या कर रहे थे। उनका भाव ये था कि उन्हें ऐसा वर प्राप्त हो कि वो मृत्यु से बच सके। उस समय प्रहलाद माता के घर में थे। प्रहलाद के 3 भाई थे और जो देवता थे उन्हें पता था इस औरत के घर में बच्चा है। उनको ये भय था कि बेटा बाप जैसे नहीं निकले। तो इंद्र सारे देवता प्रहलाद की मां को घसीट कर ले जा रहे थे। जब नारद मुनि वहां पहुंचकर नारद मुनि ने कहा क्यों खींच रहे हो, इस औरत को छोड़ दो। इस औरत के घर में एक महान संत है। तो नारद मुनि ने प्रहलाद की मां को अपने आश्रम में शरण दिया, यहां की उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया। ये जो सारा उपदेश आप पढ़ रहे हो ये उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ था कब? वो माता के घर में थे। प्रहलाद ने 4 श्लोक पहले ये कहा कि वही माता तो समय के साथ भूल गई जो उपदेश नारद मुनि ने दिया, पर मैं नहीं भूला। तो इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति का जीवन माता के घर में ही शुरू हो जाता है। इस कारण गर्भपात और नकली तरीकों से संतान रोकना महान अपराध या पाप माना जाता है। तो पिछले 4 श्लोकों में प्रहलाद महाराज आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय में बड़े गहराई के साथ आत्मा के विषय में हमें ज्ञान मिलता है। और महान संत ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि पूरी गीता में दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप बच्चों को जब शिक्षा देना शुरू करते हो, पहले क्या सिखाते हो? ABCD। तो आध्यात्मिक जीवन का ABCD है ये समझना कि आत्मा का क्या स्वरूप है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो मानते ही नहीं कि आत्मा है, वो ये सोचना चाहते हैं कि मृत्यु के साथ पूरा खेल समाप्त हो जाता है। पर हमारे शास्त्रों में उपदेश दिया जाता है आत्मा के विषय में। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित कर रहे हैं क्या कि देह में क्या है? आत्मा है। देहनास्मिन यथा देह कौमार यौनम जरा तथा ध्यान प्राप्त सचना मुहती। आत्मा शरीर में रहती है, वहां जो शरीर है 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, मेंटेन करता है, फिर कुछ पैदा करता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। पर आत्मा देह में रहती है और मृत्यु के समय, जब मृत्यु होती है तो हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं, पर मृत्यु क्या है? जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, नथिंग बट अ चेंज ऑफ ड्रेस। आप अपने वस्त्रों को त्याग रहे हो। भगवद गीता में भगवान उदाहरण देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार आप अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हो, ये आत्मा एक देह को त्याग कर क्या प्राप्त करती है? अगला देह प्राप्त करती है। नहीं उसमें यथा देह है। तो ये आत्मा जो है सनातन है, जो जायते मियते वा कदाचन। भगवान ने गीता में कहा आत्मा का ना जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। आधुनिक युग की प्रजा ये कहती है कि आत्मा है ही नहीं। आत्मा के विषय में ज्ञान हमें दूसरे ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बाइबल में कहा गया है, What shall I do if thou gainest the whole world but suffer the loss of your eternal soul? इस विषय पर बाइबल ग्रंथ में कहा गया है, तुम सारे विश्व के धन को प्राप्त कर लोगे पर अगर आपने अपनी आत्मा को खो दिया तो आपने कुछ प्राप्त किया है? कुछ नहीं प्राप्त किया है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो आत्मा में विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? कारण है क्योंकि वो ये स्वीकार करेंगे आत्मा है, आत्मा सनातन है, आत्मा का देहांत तैयार हो रहा है, तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें हमारे पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हम तो ये सोचना चाहते हैं कोई परिणाम है ही नहीं, तो हम सोचते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये भूल है। तो आत्मा का प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? चेतना। As long as the soul is there is consciousness in the body। तो आत्मा का प्रमाण है चेतना। जब तक आत्मा है देह में आपको प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जब आत्मा देह को त्याग देती है, चाहे कोई कितनी भी जोर से बोले, आप उत्तर नहीं प्राप्त करोगे। तो आत्मा का प्रमाण है चेतना। कई बार जब आप प्रचार करते हो, भौतिकवादी व्यक्ति कहते हैं हम उसी चीज में विश्वास करेंगे जो हम देख सकते हैं आंखों के साथ, जैसे हम देख नहीं सकते उसमें हम विश्वास नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है? आप अनुभव कर सकते हो। जब तक आत्मा है चेतना है, जो आत्मा शरीर को त्यागती है चेतना नहीं रहती। तो ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। जब आप ये समझोगे कि आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है, तो ये भी सोचोगे कि हमें सावधानी से कार्य करना चाहिए, हर कार्य करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। श्रीमद् भागवतम में देवहूति और उनके बेटे कपिलदेव के वर्ताप का वर्णन है। कपिलदेव भगवान के अवतार थे, उनकी माता देवहूति को पता था मेरा बेटा अवतार है, तो माता ने बेटे से कई प्रश्न पूछे। माता ने पूछा, ये बताओ बेटा, ये कैसे निर्णय होगा कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा, क्योंकि आप कह रहे हो आत्मा सनातन है, आप कह रहे हो केवल देहांतर होता है आत्मा का, तो अगला ध्येय किस प्रकार का प्राप्त होगा। और इस प्रश्न के उत्तर में कपिलदेव भगवान ने कहा, खान वाला ध्येय व नहीं प्रेरणा जंतु देहो पपते, हमारे कर्मों के अनुसार ये निश्चित किया जाएगा किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। तो कई बार लोग कहते हैं, हमारे कर्मों का साक्षी कौन बनता है, कौन है साक्षी? तो इसके उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में कपिलदेव भगवान ने कहा, कामना ध्येय व नेत्र नाम, अनेक साक्षी हैं, सारे देवता साक्षी बनते हैं, सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, ये सब साक्षी बनते हैं, और ये सब हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। तो कर्मों के अनुसार ये निश्चित किया जाता है किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। अगर आपने शास्त्र पर आधारित कार्य किए हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो आपको ठीक स्थान में ठीक ध्येय प्राप्त होगा। और अगर आप भगवान की शिक्षा के आधार पर चले हो, तो भगवान के धाम में जा सकते हो। और अगर आप शास्त्र के विपरीत कार्य करते आ रहे हो, तो उसके अनुसार परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो ये ज्ञान आत्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई लगभग 50 साल पूर्व कनाडा के एक बहुत बड़े विज्ञानी ने कहा कि मैं 40 साल से देखते आया हूं लोगों को मरते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि ध्येय में कोई ऐसी चीज है कि जब वो चीज त्यागती है ध्येय को, ध्येय निकम्मा बन जाता है। पर अब हम खोजेंगे कहां है ये ध्येय में ये चीज। तो ये लेख आया था मॉन्ट्रियल कनाडा के एक अखबार में, हमने वो लेख प्रभुपाद जी को भेजा। तो प्रभुपाद जी ने इस विज्ञानी को पत्र लिखा। प्रभुपाद ने कहा कि मैं आभारी हूं, तुम ये तो स्वीकार कर रहे हो कि ध्येय में कोई ऐसी चीज है और जब वो चीज त्यागती है तो हम क्या कहते हैं, मृत्यु आ गई। पर प्रभुपाद जी ने आगे फिर गीता के अनेक श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया, ये आत्मा, और ये आत्मा का क्या है स्वरूप, न जायते मृते वा कदाचन। और प्रभुपाद जी ने कहा, तुम कभी खोज नहीं पाओगे ये कहाँ है, तो आप अनुभव कर सकते हो। अंत में उस विज्ञानी ने प्रभुपाद को स्वीकार किया कि जो वैदिक ज्ञान है भौतिक ज्ञान से हजारों गुना ऊंचा है। ये पूरा वार्तालाप प्रभुपाद का इस प्रसिद्ध विज्ञानी के साथ आप साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ सकते हो। तो इस श्लोक में प्रलाल महान उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कोई जियोलॉजिस्ट जिसके पास ज्ञान रहता है सोने को कैसे ढूंढा जाए, उसके बाद जैसे कईयों के पास ज्ञान रहता है तेल कैसे ढूंढा जाए, जिस प्रकार उसको पता है सोना कैसे ढूंढा जाए, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या समझ पाता है, समझ पाता है कि देह के अंदर आत्मा है, और ये आत्मा है, आत्मा का क्या है स्वरूप, सनातन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं ये आध्यात्मिक विधि समझने के लिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए। जैसे कि भगवान ने गीता के 14 अध्याय में कहा है तद विधि प्राणिपतेना प्राणिपतेना सेवया। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लो। इस विषय पर शास्त्र में बार बार दिया जाता है। साधारण समाज में अगर आप किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो आपको उस क्षेत्र के एक्सपर्ट आदमी से शिक्षा लेनी पड़ती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के विषय में भी इसी विषय की स्थापना है। रूपा गोस्वामी कहते हैं प्रमाणिक गुरु का एक लक्षण क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार परस्त वेगम, कि उसका मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो पहले शरण कदम में हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, फिर सेवा करनी चाहिए, फिर दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। आगे ये पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर से दवाई लेते हो फिर पूछते हो डॉक्टर जी क्या खुराक होनी चाहिए, तो दीक्षा के ये नहीं कि दीक्षा के साथ सब खत्म, दीक्षा के पश्चात सेवा करो और पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भगवती की मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। और आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर कोई त्यागने की आवश्यकता है तो त्यागो पर किसी कीमत में भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि वेदों में कहा गया है कि हमें प्रमाणिक गुरु के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और प्रमाणिक गुरु का एक लक्षण क्या है, वो भगवान के संदेश को यथा रूप देता है। ये नहीं कि अपने भावार्थ को जोड़ देता है, ये आवश्यक है। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया। प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, उन्होंने यथारूप संदेश दिया और यथारूप सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तो जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान शुरू किसके साथ होता है, इस शिक्षा के साथ कि तुम हो कौन। अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं, अज्ञानता में हम सोचते हैं कि ध्येय हमारा असली स्वरूप है। और जब आप सोचते हो कि ध्येय हमारा स्वरूप है तो सुबह से रात तक आप व्यस्त रहते हो किस कार्य में, किस कार्य में, ध्येय की संतुष्टि में, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। और हमारे महान संतों ने कहा है कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो आप इन इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकोगे। श्रीमद् भागवतम में आप एक कथा पढ़ते हो महाराज ययाति की, उन्हें 10,000 सालों के लिए इंद्रिय तृप्ति की पूरी सुविधा थी और अंत में उन्होंने क्या अनुभव किया कि वो इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। तो हमारे आचार्यों ने हमें बड़े गहराई के साथ समझाया है कि आप इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं कर सकते इंद्रिय तृप्ति के कार्य के द्वारा। इसलिए शासन का निर्णय क्या है, इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किस लिए, किस लिए? भगवान की सेवा में। हमारे समक्ष कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण है अम्बरीश महाराज का, जो पृथ्वी के राजा थे, उस साथ में भक्त भी थे। प्राचीन समय में जो शासन करते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राजा भी थे और शुद्ध भाव भी था, और उनके निर्देशन में समाज अत्यंत सुखी था। जैसे आज भी हम राम राज्य का स्मरण करते हैं ना, राम राज्य का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि राम राज्य के समय समाज अत्यंत सुखी था, सब पर भगवान राम की उपासना कर रहे थे। तो ये आवश्यक है कि ये दुर्लभ मानव जीवन के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त हो। प्रहलाद महाराज ने कहा इस अध्याय के आरंभ में, कौमारा अक्षत प्रज्ञ, 500 की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो श्रील प्रभुपाद जी ने गांधी जी को एक पत्र डाला। गांधी प्रभुपाद ने कहा आपकी गीता में बड़ी श्रद्धा है, पूरा समाज आपको आदर देता है, गीता का उपदेश पाठशाला में शुरू करो। तो कोई उत्तर नहीं आया। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश हमें छोटी आयु से शुरू करना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले, एक महीने पहले हम लोग लुधियाना में थे रथ यात्रा के लिए, और उस रथ यात्रा में आरंभ करने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये साल गीता जयंती के उपलक्ष हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, और पूरे सारे 21 डिस्ट्रिक्ट में भगवद गीता का उत्सव रखा 3 दिन के लिए, और कई स्थानों में माने इस्कॉन के भक्त गए थे सरकार के सहयोग के करने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट ने 5 लाख रुपए खर्चा गीता के प्रचार के लिए 3 दिन के लिए। अच्छी बात है। तो मुख्यमंत्री हमें मिले, हमने गीता दी, तो कह रहे थे अगले साल से हमने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव रखना है इस्कॉन के सहयोग से। और उन्होंने कहा कि अगले साल से हम गीता की शिक्षा स्कूलों में कंपलसरी बना रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि गीता की शिक्षा स्कूलों में दी जाए, और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कौमन आचर प्राज्ञ, यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें अनुकूल करना चाहिए। कब से? 5 साल की आयु से। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को, तो हम अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो आप समझ पाओगे ये जो ध्येय है ये केवल आपके आत्मा को ढक रहा है, जैसे कि आप अपने शरीर को ढकते हो किसके साथ? कपड़ों वस्त्रों के साथ। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मोहग्रस्त नहीं होता जब किसकी मृत्यु भी हो जाए। वो जानता है जिस कार्य, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको मृत्यु के सामने भी झुकना ही पड़ेगा। हमें दुखी होना चाहिए जब हमें दुखी होना चाहिए जब हम देखते हैं कि मनुष्य देह है किसके पास, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जब हमें शोक करना चाहिए, जब व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया जब शोक करने का क्या लाभ? शोक करना चाहिए जबकि देह है और हम उनका गलत कामों में उपयोग करें। इसलिए भक्तों के लिए प्रचार की आवश्यकता रहती है, हम लोगों को ज्ञान है। तो अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो ये ज्ञान आत्मा सनातन है, आत्मा का देहांतर हो रहा है और कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित किया जाता है, ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD। और जब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझोगे आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और यहां कहा गया है ये ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हो किसके द्वारा, प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। जैसे हम ग्रंथों का वितरण करते हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से लाखों लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर इस समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो प्रमाणिक गुरु साधु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्तिया मम अभिजानन्ति, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। तो भक्ति का माध्यम क्या है, प्रेम के प्रेम ही सेवा। तो हम आपको अमरेश महाराज का उदाहरण दे रहे थे किस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी, नेत्रों का उपयोग करो भगवान का दर्शन लेने के लिए, पैरों का उपयोग करो किस लिए, भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए, हाथों का उपयोग करो किस लिए, भगवान के मंदिरों को साफ करने के लिए। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में। तो साधु संघ के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन आरंभ किया एक प्रश्न के साथ, इस महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहां की ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है, और सब चुप हो गए। तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब आपके पास ये ज्ञान हो तो फिर आप सावधानी से कार्य करोगे, आप समझोगे कि मृत्यु भी जो है वो केवल आप अपने पोशाक को बदल रहे हो। तो गीता में अनेक श्लोकों के द्वारा दूसरे अध्याय में इस विषय की स्थापना की गई है, और श्रीमद् भागवतम में भी शुरू से अंत तक भक्ति का शिक्षा, भक्ति का ज्ञान हमें मिल रहा है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, गीता में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन है, परंतु भगवान क्या कहते हैं, भक्तिया माम अभिजानन्ति, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। भगवान को समझने के लिए भौतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, खूबसूरती की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सेवो मुखे ही जीव दो। अथाश कृष्ण हमारी ना भवैध ग्रहण नहीं आई, सेवो मुखे ही जीव दो। सेवा के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो, इसलिए हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करे वो कौन है, मूर्ख है। तो आज लोग अज्ञानता में है। हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं बोलने से पहले, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुर्मीलितनेना तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, हम जन्म लेते हैं इस भाव में, इस वातावरण में जहां हमें शिक्षा दी जाती है ये देही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब बच्चा रोता है कोई समझ नहीं पाता क्या है रोने का कारण, फिर भौतिक देह शुरू से अंत तक केवल कष्ट ही कष्ट देगा। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, दुखालयम दुखी दुख हजी दस्थाई। बच्चा जब पैदा होता है रोते हुए पैदा होता है, इसे क्या सूचना मिलती है, दुखी दुख। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि शरीर जो है थोड़े समय के लिए है और किसी समय भी समाप्त हो सकता है। ये नहीं कि मृत्यु आएगी आपसे पूछकर कि अंत हर कदम पर खतरा है। पदम पदम याद भी पदम न देशाम, भागवत में कहा गया है हर कदम में खतरा है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो साधु संगत में रहकर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे ये भागवतम क्लास। भागवतम क्लास का उद्देश्य क्या है? आपको भगवान का शुद्ध संदेश दिया जाए। शुद्ध संदेश सुनोगे तो हृदय में परिवर्तन होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचनम वंदनम दर्शनम सख्यम आत्मा निवेदनम। उनके पिता ने पूछा, ये बताओ आज पाठशाला में क्या सीखे? हमारे अध्यापक ने कई विषयों की चर्चा की होगी, इनमें सबसे प्रसिद्ध क्या था? और बेटे ने क्या नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जो कि उन्होंने प्राप्त किया था किसके माध्यम से? नारद मुनि के माध्यम से। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रचार के सेवा पर बल दिया है। इसीलिए भगवान ने प्रचार के सेवा पर बल दिया, क्यों? क्योंकि आज अगर ये समाज में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? दिव्य ज्ञान की कमी है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़े गहराई के साथ समझाया है कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो ये नहीं सोचता कि मैं ये शरीर हूं। तो आप कहोगे हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर को क्या शरीर को खा सकते हैं किसी और के शरीर को? ये देह का उपयोग करना चाहिए हमें भगवान की सेवा में। जब इस देह का उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में तो वो है वो असली उपयोग। जब हम देह का उपयोग करें इंद्रिया तृप्ति के कार्य में, ये है पशु का जीवन। तो आज समाज की स्थिति क्या है? लोग जहर पी रहे हैं। जैसे एक प्रसिद्ध कवि ने कहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण है बाज्य, जानिया शून्या पीसा खाइनो। मनुष्य जीवन तो मैंने प्राप्त कर लिया पर राधा कृष्ण क्या उपासना नहीं की। तो मैं ज्ञान बुझकर क्या कर रहा हूं? जहर पी रहा हूं। तो आज ये है समाज की स्थिति, लोग जहर पी रहे हैं। और जब आप उन्हें अमृत दो वो क्या कहते हैं? जहर पी रहे लोग। पर कई जो भाग्यवान भाग्यशाली है अमृत को स्वीकार करते हैं। आप सब कैसे जुड़े? किसी ने आपको प्रचार किया, किसी ने कहा ये लो अमृत और आपने स्वीकार किया। तो ये नहीं कि अमृत किसी को नहीं चाहिए, कईयों को अमृत भी चाहिए। इसलिए जो भक्त हैं सदा प्रचार करते हैं अमृत पहुंचाने के लिए। और इसलिए भक्त जो प्रचार करते हैं भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की समाप्ति में कह रहे हैं कि हमें परम भगवान और आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इस ज्ञान की प्राप्ति से आप भगवान के धाम लौट जाओगे और सब समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। तो क्या अवश्य है? इस ज्ञान का लाभ उठाना। केवल ज्ञान रखना लाभ में उसका पालन नहीं करना उसे काम नहीं चलेगा। ज्ञान लेना और ज्ञान का पालन करना, फिर दूसरे शब्दों में शास्त्रीय ज्ञान है हमारे पास पर हम उसका पालन नहीं करें तो कुछ लाभ है? भारत में कई लोग मिलेंगे जिन्होंने पूरी गीता खंडस की है पर उनका आचरण जो है पशुओं जैसे। तो हमें इस ज्ञान ज्ञानम विज्ञानम इस ज्ञान का उपयोग करना है और ये साधु संग में रहने से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काया लाभ मात्र साधु संग सर्वदिव्याया। हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हम सदा साधु संगत में रहें। साधु संगत में रहने के दो माध्यम हैं, एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। आप इन ग्रंथों को पढ़ो और भक्तों के संगत में रहो, इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। तो संक्षेप में आज के श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं और इस अध्याय में आपको शिक्षा प्राप्त होती है जो प्रहलाद महाराज ने माता के घर में प्राप्त किया। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जिस प्रकार एक जियोलॉजिस्ट वो जानता है सोना कहाँ मिलेगा, जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है ये ध्येय नश्वर है, आत्मा सनातन है। आत्मा का केवल देहांतर होता है, मृत्यु का कोई अर्थ नहीं, केवल आप अपने ध्येय को बदल रहे हो और ये निश्चित किया जाता है कर्मों के आधार पर। इसलिए हमें बड़े सावधानी से रहना चाहिए, भक्ति के मार्ग में जुड़ो, अपराधों से बचना चाहिए और अगर हम ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे तो इस जीवन की समाप्ति पर कहाँ लौटोगे। पर हम इतने धीरे हम कहते हैं क्या जल्दी है लौटने की, यहाँ ही असली सुख है, असली सुख है कहाँ, वैकुंठ धाम, यहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति के माध्यम से ही आप उस धाम में लौट सकते हो। और संक्षेप में भक्ति का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में, और साधु संघ में भक्ति की विधियों का पालन ज्यादा सरल हो जाता है। इसलिए शासन का निर्णय क्या है, साधु संघ का लाभ उठाओ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न नो क्वेश्चन ओके या क्वेश्चन के हरे कृष्णा।
धन्यवाद।